आदित्य वर्मा ने पहली बार भविष्य को उस दिन देखा जब वर्तमान ने चलना बंद कर दिया। वो एम्बुलेंस में घायल बच्चे की छाती पर दबाव दे रहा था। सड़क पर बारिश थी, सायरन बज रहा था और उसकी साथी पैरामेडिक जोया ड्राइवर को जल्दी चलाने के लिए चिल्ला रही थी। अचानक सायरन की आवाज एक ही सुर में अटक गई। बारिश की बूंदें हवा में स्थिर हो गईं। एम्बुलेंस के आगे दौड़ता कुत्ता बीच छलांग में जम गया। केवल आदित्य अपनी आंखें हिला सकता था। उसके सामने सुनहरी स्क्रीन बनी, काल परत क्षतिग्रस्त। पृथ्वी का वर्तमान अगले 24 घंटे में विखंडित होगा। प्रत्येक जीवित मनुष्य एक काल क्षमता चुने, चुनाव स्थायी है। स्क्रीन पर शक्तियां दिखाई दी। 3 सेकंड समय रोकना, पिछला घाव लौटाना, गति बढ़ाना, उम्र घटाना, किसी वस्तु की स्थिति 5 मिनट पीछे करना और संभावित भविष्य देखना। हर शक्ति के साथ उपलब्ध उपयोगकर्ताओं की संख्या थी। सबसे शक्तिशाली विकल्प कुछ ही पलों में गायब हो गए। आदित्य बच्चे की धड़कन को लौटते देखना चाहता था। उसने पिछला घाव लौटाने की शक्ति छूने की कोशिश की, मगर सीमा भर चुकी थी। अंत में धूसर रंग का एक विकल्प बचा, भविष्य ऋण, अज्ञात श्रेणी। विवरण: उपयोगकर्ता अपने किसी संभावित भविष्य रूप से अधिकतम 30 सेकंड के लिए शारीरिक क्षमता, ज्ञान या कौशल उधार ले सकता है। प्रत्येक ऋण के बदले उस भविष्य की एक स्मृति स्थायी रूप से जला दी जाएगी। जिस भविष्य की स्मृति जलेगी वह संभावना दोबारा उपलब्ध नहीं होगी। ऋण चुकाए बिना अगला उपयोग वर्जित। आदित्य विवरण पूरी तरह समझ नहीं पाया। बच्चे की नब्ज खत्म हो रही थी और चुनाव के केवल 2 सेकंड बचे थे। उसने भविष्य ऋण स्वीकार कर लिया। समय फिर चला। एम्बुलेंस के शीशे पर बारिश गिरी। घायल बच्चे की हृदय गति सीधी रेखा में बदल गई। आदित्य की स्क्रीन पर 3 संभावित भविष्य खुले। पहले में वो 5 वर्ष बाद अनुभवी आपातकालीन चिकित्सक था। दूसरे में 10 वर्ष बाद किसी युद्ध क्षेत्र में घायलों का उपचार कर रहा था। तीसरे भविष्य में उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया, केवल एक मजबूत हाथ बच्चे की छाती पर सही स्थान दबा रहा था। उसने 5 वर्ष बाद वाले स्वयं से चिकित्सा कौशल उधार लिया। दुनिया बदल गई। उसे बच्चे की त्वचा का रंग, सांस का प्रतिरोध और हृदय की सूक्ष्म लय ऐसे समझ आने लगी जैसे उसने हजारों बार ये प्रक्रिया की हो। उसने जोया को सही दवा बताई, दबाव का कोण बदला और छोटी नली से फेफड़े का दबाव छोड़ा। 28वें सेकंड पर बच्चे की नब्ज लौट आई। फिर कौशल चला गया। आदित्य के दिमाग में एक ऐसी याद चमकी जो अभी हुई ही नहीं थी। 5 वर्ष बाद वही बच्चा अस्पताल में स्वस्थ होकर उसे धन्यवाद देने आया था। उसके हाथ में पीले फूल थे। दृश्य आग की तरह जला और गायब हो गया। स्क्रीन ने लिखा, ऋण चुकाया गया, यह भविष्य अब संभव नहीं। बच्चा वर्तमान में जीवित था, मगर वो मुलाकात कभी नहीं होगी। शायद आदित्य 5 वर्ष बाद वहां नहीं होगा। शायद बच्चा उसे पहचान नहीं पाएगा या शायद दुनिया ही वैसी नहीं बचेगी। शक्ति ने केवल याद नहीं छीनी थी, उसने संभावना का एक रास्ता बंद कर दिया था। अस्पताल पहुंचते ही आकाश में विशाल दरार खुली। उसके भीतर शहर के अलग अलग भविष्य दिखाई दे रहे थे। कहीं इमारतें समुद्र में डूबी थी, कहीं दिल्ली जंगल बन चुकी थी और कहीं सड़कों पर सफेद हड्डियों के पहाड़ थे। दरार से पारदर्शी जीव नीचे उतरे। उनका शरीर टूटी घड़ियों और मनुष्य की परछाइयों से बना था। वे जिस व्यक्ति को छूते उसकी उम्र कुछ सेकंड में आगे पीछे होने लगती। कोई बच्चा बूढ़ा होकर गिरता, कोई वृद्ध शिशु बन जाता और कुछ लोग समय से पूरी तरह मिट जाते। अस्पताल में भगदड़ मच गई। आदित्य की माँ सुनीता और छोटी बहन काव्या शहर के दूसरी ओर घर में थी। उसने फोन किया। काव्या ने बताया कि उनके इलाके में समय बार बार दोहरा रहा है। पड़ोसी एक ही सीढ़ी से उतरकर फिर ऊपर पहुंच जाते हैं। माँ का मधुमेह बढ़ रहा था और दवा कम थी। आदित्य तुरंत निकलना चाहता था, लेकिन एम्बुलेंस वाला बच्चा और दूसरे घायल उसकी जिम्मेदारी थे। अस्पताल की बिजली टूटती काल लहरों से बंद हो रही थी। डॉक्टरों में से कई अपनी नई शक्तियां समझ नहीं पा रहे थे। जोया को क्षण चिन्ह क्षमता मिली थी। वह किसी स्थान की वर्तमान अवस्था दर्ज करके 5 मिनट के भीतर उसे एक बार उसी अवस्था में लौटा सकती थी। उसने गहन चिकित्सा कक्ष की बिजली को चिन्हित किया, लेकिन असर केवल 5 मिनट रहता। अस्पताल के मुख्य द्वार पर पारदर्शी जीव आया। सुरक्षाकर्मियों की गोलियां उसके शरीर से गुजर गईं। वह गोली लगने से पहले और बाद की अवस्था के बीच बदलता रहा। आदित्य ने संभावित भविष्य खोले। एक दिन बाद वाला स्वयं घायल था और उसे जीव के भीतर घूमती केंद्रीय घड़ी दिखाई दे रही थी। 1 वर्ष बाद वाला स्वयं भाले जैसा हथियार चलाना जानता था। 10 वर्ष बाद वाला भविष्य धुंधला और बंद था। उसने 1 दिन बाद वाले स्वयं की दृष्टि उधार ली। 30 सेकंड के लिए जीव की सारी समय परतें अलग दिखाई देने लगी। उसने जोया को बीच की नीली घड़ी पर क्षण चिन्ह लगाने को कहा। फिर सुरक्षाकर्मी ने गोली चलाई। जीव ने चोट से पहले की अवस्था में लौटना चाहा, लेकिन जोया का चिन्ह उसे घायल वर्तमान में खींच लाया। केंद्रीय घड़ी टूट गई और शरीर कांच की तरह बिखर गया। ऋण की कीमत सामने आई। आदित्य ने एक संभावित याद देखी। अगले दिन अस्पताल की छत पर वह जोया के साथ चाय पीते हुए सूर्योदय देख रहा था। दोनों जीवित बचने पर हंस रहे थे। याद जल गई, अब वो सुबह कभी नहीं आएगी। जोया ने उसकी आंखों में चमकती राख देखी। आदित्य ने शक्ति का नियम बताया। उसने हल्के स्वर में कहा, तो भविष्य से उधार लेते समय ब्याज बहुत ज्यादा है। अस्पताल के निदेशक ने घायलों को भूमिगत वार्ड में ले जाने का आदेश दिया। आदित्य बच्चे को सुरक्षित छोड़कर घर जाने लगा। जोया ने साथ आने का निर्णय लिया।
उनके साथ तीन लोग और जुड़े, सेवानिवृत्त गणित शिक्षक देवेंद्र, जिसकी क्षमता 10 सेकंड आगे की वस्तुस्थिति देखना थी, कॉलेज छात्रा परी, जो किसी व्यक्ति की उम्र 5 मिनट के लिए स्थिर कर सकती थी, और डिलीवरी चालक राशिद, जिसे वाहन चलाते समय समय लहरों का असर कम होता था। वे एम्बुलेंस लेकर निकले। शहर छोटे छोटे समय क्षेत्रों में टूट चुका था। एक सड़क पर लोग अत्यंत धीमे चल रहे थे। अगली गली में पेड़ कुछ सेकंड में बढ़कर मकानों को चीर रहे थे। कहीं दुर्घटना बार बार दोहरा रही थी और हर चक्र में घायल व्यक्ति वही चीख पुकारते। देवेंद्र सही क्षण देखकर राशिद को रास्ता बताता रहा। एक पुल पर सफेद कवच पहने लोगों ने उन्हें रोका। उनका नेता नक्श नाम का युवक था। उसके पास एस श्रेणी की क्षमता थी, भविष्य काटना। वह किसी व्यक्ति की एक संभावित क्रिया को होने से पहले मिटा सकता था। अगर कोई उस पर गोली चलाने वाला होता तो वह गोली चलने की संभावना काट देता और व्यक्ति का हाथ ट्रिगर दबाना भूल जाता। उसने पुल को अपना क्षेत्र बना लिया था और पार होने के बदले लोगों की काल ऊर्जा ले रहा था। जिनकी शक्ति उपयोगी थी उन्हें अपने समूह में रखता, बाकी लोगों की भविष्य संभावनाएं काटकर उन्हें खाली और आज्ञाकारी बना देता। नक्श ने आदित्य की शक्ति देखी तो रुचि दिखाई। तुम भविष्य खर्च कर सकते हो, मैं बेकार भविष्य काट सकता हूँ। हम मिलकर बिना पछतावे के दुनिया चुन सकते हैं। आदित्य ने पूछा, किसके लिए बेकार? नक्श मुस्कुराया, जो जीतता है वही तय करता है। उसने एम्बुलेंस देने की मांग की। राशिद ने वाहन पीछे मोड़ना चाहा, लेकिन नक्श ने उस संभावना को काट दिया। उसके हाथ स्टीयरिंग पर स्थिर हो गए। पुल के पारदर्शी जीव पास आ रहे थे। आदित्य ने भविष्य खोला। 1 वर्ष बाद वाला स्वयं युद्ध क्षेत्र में चाकू चलाना जानता था। 7 वर्ष बाद वाला स्वयं नक्श की क्षमता की कमजोरी समझता था, लेकिन उसके साथ एक छोटी लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा आदित्य नहीं देख सका। 30 वर्ष बाद कोई संभावना नहीं थी। उसने 7 वर्ष का ज्ञान उधार लिया। उसे समझ आया कि नक्श केवल वही भविष्य काट सकता है जिसे वह स्पष्ट इरादे के रूप में पढ़ सके। अनिश्चित, साझा या अचानक बदला निर्णय उसकी पकड़ से निकल सकता था। आदित्य ने समूह को कोई योजना नहीं बताई। उसने सिक्का हवा में उछाला और तय किया कि चित आया तो एम्बुलेंस आगे जाएगी, पट आया तो सब अलग दिशाओं में भागेंगे। निर्णय सिक्का गिरने से पहले किसी के मन में निश्चित नहीं था। पटाया सभी अलग भागे। नक्श एक साथ 5 अनिश्चित भविष्य नहीं काट पाया। जोया ने पुल के अवरोध को टूटने से पहले वाली खुली अवस्था में लौटाया। राशिद ने एम्बुलेंस घुमाई और आदित्य चलते वाहन पर चढ़ गया। पारदर्शी जीव नक्श के लोगों पर टूट पड़े।
ऋण की कीमत में 7 वर्ष बाद की याद दिखाई दी। आदित्य किसी स्कूल के बाहर उसी धुंधली छोटी लड़की का हाथ पकड़े था। लड़की उसे पापा कह रही थी। जोला उसके पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। दृश्य जल गया। आदित्य के सीने में ऐसा खालीपन बना जैसे उसने किसी वास्तविक बच्चे को खो दिया हो। उसने जोया की ओर देखा पर कुछ नहीं बताया। वो भविष्य अब संभव नहीं था। घर पहुंचने से पहले उन्हें समय के चक्र में फंसा बाजार मिला। हर 6 मिनट बाद पूरा इलाका उसी स्थिति में लौट जाता। लोग अपनी पिछली कोशिश भूल जाते और बार बार एक ही रास्ते से भागकर मरते। देवेंद्र की 10 सेकंड दृष्टि भी चक्र के बाहर नहीं देख सकती थी। आदित्य को हर चक्र याद रहता क्योंकि भविष्य ऋण वर्तमान के बाहर दर्ज था। पहले चक्र में एम्बुलेंस इमारत से टकराई। दूसरे में उन्होंने दूसरी सड़क ली मगर दरार से गिरती घड़ी ने रास्ता तोड़ा। तीसरे में परी बूढ़ी होकर गिर गई। जोया ने उसे चिन्ह से लौटाया पर चक्र फिर शुरू हो गया। चौथे चक्र में आदित्य ने भविष्य खोलकर 10 वर्ष बाद वाले स्वयं को देखा। वो सफ़ेद बालों वाला शांत व्यक्ति था और समय चक्रों के गणित को समझता था। उसके पीछे घर की बालकनी में माँ पौधों को पानी दे रही थीं। आदित्य को उस ज्ञान की ज़रूरत थी। उसने 10 वर्ष बाद की गणना उधार ली। 30 सेकंड में उसने चक्र के केंद्र की पहचान की, बाजार की पुरानी घड़ी जो हर 6 मिनट पर अपनी टूटी सुई वापस जोड़ रही थी। देवेंद्र ने 10 सेकंड आगे देखकर गिरती घड़ी का सही रास्ता बताया। राशिद ने एम्बुलेंस गति में रखी। जोया ने घड़ी को टूटने के बाद वाली अवस्था में चिन्हित किया। अगले चक्र में घड़ी वापस जुड़ने लगी तो उसने चिन्ह सक्रिय कर उसे फिर टूटा कर दिया। चक्र समाप्त हो गया। कीमत में 10 वर्ष बाद की बालकनी जली। माँ के साथ वो शांत सुबह अब कभी नहीं आती। आदित्य को लगा जैसे उसने उन्हें बचाने निकलकर उनकी ही भविष्य की जिंदगी कम कर दी हो। जब वे घर पहुंचे तो इमारत एक समय बुलबुले में बंद थी। बाहर की दुनिया में 4 घंटे बीत चुके थे, भीतर हर 15 मिनट दोहरा रहे थे। काव्या बार बार माँ को दवा देती, खिड़की से मदद का संकेत बनाती और फिर सब पहले जैसा हो जाता। उसे चक्र याद नहीं रहता लेकिन हर बार उसकी आंखों के नीचे थकान थोड़ी बढ़ जाती। बुलबुले का केंद्र छत पर था। वहां घड़ियों से बना एक शिकारी बैठा था जो निवासियों के दोहराए भविष्य खा रहा था। आदित्य और समूह सीढ़ियों से ऊपर गए। हर मंजिल पर उनकी उम्र अलग गति से बदलती। परी सबकी उम्र स्थिर रखने की कोशिश करती रही मगर उसकी शक्ति 5 व्यक्तियों पर कमजोर पड़ने लगी। राशिद कुछ मिनटों के लिए बूढ़ा हो गया। देवेंद्र बच्चा बनकर सीढ़ी पर बैठ गया, फिर अगली लहर में सामान्य हुआ। छत पर शिकारी ने उनके संभावित भविष्य शरीर से बाहर छवियों की तरह खींच दिए। आदित्य ने देखा कि किसी भविष्य में वो माँ और काव्या को बचाकर छोटे शहर चला गया था। किसी में वो अस्पताल का निदेशक बना, किसी में वो पहली लड़ाई में मर चुका था। शिकारी उन छवियों को खा रहा था और हर भविष्य के साथ आदित्य की स्क्रीन के विकल्प कम हो रहे थे। उसने युद्ध क्षेत्र वाले 1 वर्ष बाद के स्वयं से शारीरिक क्षमता उधार ली। शरीर मजबूत हुआ, प्रतिक्रिया तेज हुई और दर्द कुछ समय के लिए दूर चला गया। उसने शिकारी के घूमते बाहरी छल्ले तोड़े। जोया ने केंद्रीय घड़ी पर चिन्ह लगाया। परी ने शिकारी की उम्र स्थिर कर दी ताकि वो चोट से पहले की अवस्था में न लौट सके। राशिद ने एम्बुलेंस की स्टील केबल उसके पैरों में लपेटी। सबने मिलकर उसे छत से नीचे खींच दिया। ऋण की कीमत में एक वर्ष बाद की याद चली। काव्या का कॉलेज का पहला दिन। आदित्य उसे नई किताबें देकर फोटो खींच रहा था। अब वो दिन शायद आएगा मगर आदित्य उसमें मौजूद नहीं होगा। बुलबुला टूटा। काव्या ने भाई को देखते ही गले लगाया। माँ जीवित थी लेकिन समय के दोहराव ने उनकी दवा का असर बिगाड़ दिया था। उन्हें अस्पताल चाहिए था। आदित्य ने भविष्य खोला पर सुरक्षित चिकित्सा वाला कोई साफ रास्ता दिखाई नहीं दिया। शहर का भविष्य तेजी से खत्म हो रहा था। आकाश की दरार से घोषणा हुई, काल विखंडन 50%। शेष संभावित भविष्य केंद्रीय समय भक्षक को दिए जाएंगे। नया स्थायी वर्तमान केवल एक विजेता की इच्छा से बनाया जाएगा। स्क्रीन पर उम्मीदवारों के नाम आए। सबसे ऊपर नक्श था। उसने पुल के बाद कई समूहों की संभावनाएं काटकर अपनी काल ऊर्जा बढ़ा ली थी। दूसरे स्थान पर किसी अज्ञात व्यक्ति का नाम था, ऋणदाता। तीसरे पर आदित्य। काव्या ने पूछा, ऋणदाता कौन है? आदित्य की स्क्रीन पर पहली बार उसके भविष्य ऋण के नीचे चेतावनी खुली। हर लिया गया ऋण किसी भविष्य रूप से आता है। जब किसी उपयोगकर्ता के पर्याप्त भविष्य जल जाते हैं, उन सभी असंभव रूपों की बची हुई इच्छाएं एक अलग अस्तित्व बना सकती हैं। उसे ऋणदाता कहा जाता है। वो उपयोगकर्ता से अपना खोया जीवन वापस लेने आएगा। आदित्य ने आकाश की दरार में एक चेहरा देखा। वो उसका अपना चेहरा था। बस उम्र का अनुमान लगाना असंभव था। कभी जवान, कभी बूढ़ा और कभी हड्डियों जैसा। उसके पीछे वे सारे भविष्य जल रहे थे जिन्हें आदित्य ने शक्ति की कीमत में खोया था। ऋणदाता ने उसकी ही आवाज में कहा, तुम वर्तमान बचाते रहे और हमें मिटाते रहे। अब हम अपना जीवन लेने आए हैं। उसकी आवाज केवल कानों में नहीं गूंजी, शहर की हर बंद स्क्रीन, हर टूटी घड़ी और हर इंसान की चेतना में वही वाक्य एक साथ सुनाई दिया। सड़क पर भागते लोग रुक गए। कुछ ने अपने सामने ऐसे जीवन देखे जो उन्होंने कभी जिए ही नहीं थे। किसी बूढ़े ने खुद को जवान बेटे के साथ दुकान चलाते देखा जबकि उसका बेटा वर्षों पहले मर चुका था। एक घायल स्त्री ने अपनी गोद में उस बच्चे को देखा जिसे जन्म देने का अवसर उसे कभी नहीं मिला था। संभावनाएं इतनी सुंदर थीं कि लोग वर्तमान भूलकर उनकी तरफ हाथ बढ़ाने लगे। जैसे ही कोई उस दृश्य को छूता, उसका शरीर पारदर्शी होने लगता। देवेंद्र चिल्लाया, उन्हें देखने मत दो, ऋणदाता उनके वर्तमान के बदले अधूरे भविष्य बेच रहा है। जोया ने माँ और काव्या की आंखों के सामने कंबल कर दिया। राशिद ने एम्बुलेंस के शीशों पर काली पट्टियां चिपकाई। वे अस्पताल की ओर निकले मगर सामान्य रास्ते अब मौजूद नहीं थे। एक ही मोड़ के बाद कभी बचपन का स्कूल आता, कभी वर्षों पुराना शमशान और कभी ऐसा चमकता शहर जहां आकाश में वाहन उड़ रहे थे। देवेंद्र 10 सेकंड आगे देखकर दिशा बताता रहा लेकिन हर दिशा अगले ही पल बदल जाती। आदित्य को रास्ता समझने के लिए भविष्य खोलना पड़ा। उसके सामने सैकड़ों विकल्प आए पर अधिकांश रास्ते जैसे धुंधले थे। केवल एक रास्ता साफ था, नगर घड़ी घर के नीचे बना पुराना आपदा नियंत्रण केंद्र। वहीं पहली दरार खुली थी और वहीं समय भक्षक का केंद्र बन रहा था। उस रास्ते तक पहुंचने की जानकारी 20 वर्ष बाद वाले आदित्य के पास थी। स्क्रीन ने कीमत दिखाई, माँ के अंतिम दिनों की सारी स्मृतियां। उसकी उंगली रुक गई। माँ स्ट्रेचर पर दर्द से कराह रही थी। अगर वो ऋण लेता तो शायद आज उन्हें बचा लेता, लेकिन एक दिन उनकी आवाज, उनका चेहरा और उनके साथ बिताया अंतिम समय उसके लिए अनजान तस्वीरें बन जाते। काव्या ने उसकी कलाई पकड़ ली। हर बार अकेले फैसला मत करो, उसने कहा, हम भी यहाँ हैं। जोया ने सड़क पर उभरी 3 समय रेखाओं को देखा। उसकी शक्ति किसी वस्तु या मनुष्य की एक अवस्था चिन्हित कर उसे थोड़ी देर के लिए वापस ला सकती थी। उसने एम्बुलेंस को उस क्षण में चिन्हित किया जब वो सही सड़क पर थी। राशिद ने गाड़ी आगे बढ़ाई। रास्ता पलटा तो जोया ने चिन्ह सक्रिय कर दिया। पूरी एम्बुलेंस झटके से पिछले स्थान पर लौटी लेकिन उसके पहिए आगे की गति लिए रहे। वे बदलती सड़क के आर पार निकल गए। आदित्य ने ऋण नहीं लिया। पहली बार किसी संकट का उत्तर उसके भविष्य से नहीं, साथियों के वर्तमान से आया था। अस्पताल आधा खंडहर था। उसके एक हिस्से में मरीज कुछ सेकंड में बूढ़े हो रहे थे और दूसरे हिस्से में घाव लगने से पहले ही भर रहे थे। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि किस दवा का असर किस उम्र के शरीर पर होगा। परी ने माँ की जैविक उम्र स्थिर की और उन्हें आपात कक्ष तक पहुँचाया। अपनी शक्ति लगातार चलाने से परी के बालों में सफेदी उतरने लगी। तुम रुक जाओ, आदित्य ने कहा। परी हंसी, तुम्हें ही सारी कीमत चुकाने का ठेका नहीं मिला है।
आपदा नियंत्रण केंद्र में वैज्ञानिकों ने समय विखंडन का नक्शा तैयार किया था। शहर के बीच घड़ी घर से काली नसों जैसी दरारें फैल रही थीं। प्रत्येक दरार लोगों की अधूरी इच्छाओं और असंभव भविष्य से ऊर्जा खींच रही थी। केंद्र की प्रमुख डॉक्टर मीरा सेन ने बताया कि स्थायी वर्तमान बनने में केवल 3 घंटे बाकी हैं। उसके बाद सभी संभावनाएं मिट जाएंगी और विजेता द्वारा चुनी एक समय रेखा ही बचेगी। नक्श क्या चुनेगा? काव्या ने पूछा। मीरा ने उसकी फाइल सामने रखी। नक्श की छोटी बेटी एक सड़क दुर्घटना में मरी थी। जागरण के दिन उसे भविष्य काटने की शक्ति मिली लेकिन अतीत बदलने की नहीं। उसने हजारों लोगों की संभावनाएं काटकर इतनी काल ऊर्जा जमा की कि एक स्थायी वर्तमान चुन सके, वो दिन जिसमें उसकी बेटी घर से निकली ही ना हो। आदित्य कुछ पल चुप रहा। उसे पहली बार नक्श राक्षस नहीं, एक टूटा हुआ पिता लगा। मगर मीरा ने अगली तस्वीर दिखाई। नक्श की चुनी रेखा में दुर्घटना तो नहीं हुई थी, पर उसी दिन मार्ग बदलने से ईंधन का टैंकर स्कूल से टकराता, उसकी बेटी बचती और 147 बच्चे मरते। नक्श ये जानता था। उसने उन बच्चों के भविष्य पहले ही काट दिए थे ताकि नई रेखा उसका विरोध न कर सके। घड़ी घर की स्क्रीन पर नक्श दिखाई दिया। उसकी हथेली में चांदी जैसी चमकती समयधार थी। 3 घंटे बहुत हैं, उसने कहा। मुझे केवल 1 व्यक्ति चाहिए, आदित्य को मेरे पास भेज दो। उसके ऋणदाता की ऊर्जा मिलते ही मैं चयन पूरा कर दूंगा। विरोध किया तो अस्पताल की संभावना काट दूंगा, तब ये इमारत कभी बनी ही नहीं होगी। उसने हथियार हवा में चलाया। अस्पताल की एक पूरी मंजिल पल भर के लिए गायब हुई। वहां मौजूद लोग खुले आकाश में गिरने लगे। जोया ने मंजिल की पुरानी अवस्था चिन्हित कर उसे वापस खींचा, पर केवल 14 सेकंड के लिए। सुरक्षा कर्मियों और चिकित्सकों ने उन सेकंडों में सबको नीचे उतारा। समय खत्म होते ही मंजिल फिर शून्य बन गई। आदित्य ने कहा, मैं जाऊंगा। काव्या ने विरोध करना चाहा, मगर उसने समझाया कि नक्श और ऋणदाता दोनों उसी से जुड़े हैं, उनसे भागकर शहर नहीं बच सकता। मीरा ने घड़ी घर के नीचे रखी मूल काल घड़ी का नक्शा दिया। उसे रोकने के लिए 3 उम्मीदवारों की काल ऊर्जा एक ही क्षण में अलग करनी होगी। सामान्य हमला काम नहीं करेगा, क्योंकि नक्श भविष्य काट सकता है और ऋणदाता कटे हुए हर भविष्य से नया शरीर बना सकता है। देवेंद्र ने 10 सेकंड आगे देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हम मुख्य द्वार से गए तो 9वें सेकंड में मरेंगे। दूसरा रास्ता, राशिद ने पूछा, जिसे अभी तक बनाया नहीं गया। राशिद मुस्कुराया और एम्बुलेंस की चाबी घुमाई। घड़ी घर के पीछे निर्माणाधीन मेट्रो सुरंग थी। एम्बुलेंस सीढ़ियों से नहीं उतर सकती थी, इसलिए उसने सामने की दीवार चुनी। देवेंद्र हर 10 सेकंड में बताता गया कि अगला कमजोर हिस्सा कहाँ है। राशिद ने गाड़ी को टूटे बाजार, लोहे की बाड़ और सीमेंट के ढेर के बीच ऐसे चलाया जैसे सड़क उसकी इच्छा से बन रही हो। परी ने गिरते मजदूरों की उम्र स्थिर की। जोया ने बूटे पुल के 2 हिस्सों को उनके जुड़े हुए क्षण में लौटाया और एम्बुलेंस अंधेरी सुरंग में उतर गई। घड़ी घर के नीचे हजारों कांच की पट्टियां हवा में तैर रही थी। हर पट्टी में किसी मनुष्य का एक संभावित भविष्य कैद था। किसी में विवाह, किसी में बीमारी से जीत, किसी में अपराध, किसी में साधारण रविवार। नक्श बीच में खड़ा एक एक पट्टी अपनी तलवार में समेट रहा था। उसके पीछे उसकी 8 वर्ष की बेटी तारा की धुंधली आकृति थी। वो बार बार कह रही थी, पापा घर चलो, लेकिन नक्श उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। ऋणदाता कालघड़ी के ऊपर बैठा था। उसके शरीर में आदित्य के अलग अलग रूप उभरते और डूबते थे। चिकित्सक, सैनिक, पिता, अकेला बूढ़ा, शिक्षक और वो युवक जो जागरण के पहले दिन ही मर सकता था। तुम आए, उसने कहा, अपना शरीर दे दो। तुम्हारी वर्तमान जगह में हम में से एक जीवन पालेगा, बाकी संसार तुम्हारे सबसे सुंदर खोए भविष्य में बदल जाएगा। आदित्य ने पूछा, कौन सा भविष्य? ऋणदाता ने हाथ फैलाया। घड़ी घर बदल गया। सुबह की धूप वाला छोटा घर सामने था। माँ स्वस्थ थी, काव्या कॉलेज से लौट रही थी। जोया रसोई में हंस रही थी और वही छोटी लड़की दौड़कर आदित्य से लिपट गई, जिसे वो स्कूल के बाहर देख चुका था। कोई दरार नहीं थी, कोई राक्षस नहीं था। मेज पर 4 कप चाय और एक जन्मदिन का केक रखा था। आदित्य का शरीर उस दृश्य की तरफ खिंचने लगा। वहां वो सब था जिसे बचाने के लिए उसने अपनी संभावनाएं जलाई थी। लड़की ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पापा आप कहीं मत जाना। उसकी आवाज इतनी वास्तविक थी कि आदित्य की आंखों से आंसू निकल पड़े। जोया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर ये सच में हमारा भविष्य है तो मुझे याद क्यों नहीं कि मैंने चाय में चीनी कितनी डाली? दृश्य कांपा। ऋणदाता ने गुस्से में उसकी ओर देखा। जोया ने कहा, क्योंकि ये जीवन नहीं, आदित्य की इच्छा से बनी तस्वीर है। भविष्य में गलतियां होती हैं, झगड़े होते हैं, बदलाव होते हैं। तुम्हारी दुनिया में केवल वही है जो इसे चाहिए। बाकी लोगों की पसंद कहाँ है? ऋणदाता के शरीर में कई चेहरे चीखने लगे। हमारी पसंद उससे छीन ली गई थी, अब हमारी बारी है। नक्श हंसा। पसंद शक्तिशाली की होती है। उसने समय धार चलाई और ऋणदाता के एक हिस्से को काट लिया। हजारों जली संभावनाएं उसकी तलवार में समा गईं। कालघड़ी की सुइयां तेज घूमी। आकाश की घोषणा हुई, स्थायी चयन की ऊर्जा 72%। नक्श के सैनिक सुरंगों से निकल आए। उनके शरीर कई समय अवस्थाओं में टूटे थे। कोई चोट लगते ही स्वयं को 5 सेकंड पीछे कर लेता, कोई विरोधी की गति भविष्य में भेजकर उसे वर्तमान में जड़ कर देता। राशिद ने एम्बुलेंस को ढाल बनाया। देवेंद्र हमले से पहले दिशा बोलता और काव्या उन संकेतों पर लोहे के मेडिकल केक्स फेंकती। वो जागृत नहीं थी, फिर भी उसके निशाने ने एक सैनिक की समय डोरी तोड़ दी। आदित्य ने भविष्य स्क्रीन खोली। लाखों विकल्पों में अब केवल 9 साफ बचे थे। एक में वो महान योद्धा था, एक में समय वैज्ञानिक, एक में नक्श से भी शक्तिशाली शासक। वो किसी से भी शक्ति ले सकता था, पर हर विकल्प के नीचे कीमत चमक रही थी। किसी में काव्या उसे भूल जाती, किसी में माँ उसी रात मरती, किसी में जोया से उसकी कभी मुलाकात नहीं होती। अंतिम विकल्प में वो अकेला जीवित बचता और सभी संबंधों की पहचान खो देता। उसकी क्षमता असीम होती। उसने स्क्रीन बंद कर दी। नक्श ने तलवार उसकी ओर उठाई। तुम्हारी शक्ति का अर्थ ही चुनाव है। एक भविष्य बचाने के लिए बाकी काटो, यही प्रकृति का नियम है। नहीं,
आदित्य बोला, ये तुम्हारा नियम है। उसने पहली बार अपनी क्षमता को शक्ति मांगने के लिए नहीं, उसका स्रोत देखने के लिए पुकारा। स्क्रीन के पीछे महीन धागे दिखाई दिए। हर संभावित आदित्य अकेला नहीं था। उसके डॉक्टर बनने में शिक्षकों का भविष्य जुड़ा था, पिता बनने में जोया और उस अनजानी बच्ची का, माँ के साथ सुबह में काव्या, पड़ोसी, दवा बनाने वाले और हजारों लोगों के निर्णय जुड़े थे। उसने जिन भविष्यों को अपना समझ कर खर्च किया वे कभी केवल उसके थे ही नहीं। ऋणदाता भी इसी गलत धारणा से जन्मा था कि एक मनुष्य किसी पूरी समय रेखा का मालिक हो सकता है। आदित्य ने साथियों से कहा, कालघड़ी एक विजेता इसलिए चुन रही है क्योंकि हम सब अपनी संभावना अलग अलग बचा रहे हैं। अगर हम स्वेच्छा से अपने भविष्य जोड़ दें तो कोई अकेला मालिक नहीं रहेगा। मीरा की दी हुई यंत्र पट्टी में साझा काल संकल्प का भूला हुआ विकल्प था। उसे सक्रिय करने के लिए कम से कम 5 लोगों को अपनी एक निश्चित इच्छा त्याग कर भविष्य को अनिश्चित स्वीकार करना था। इसका मतलब था कि उनकी सबसे प्रिय संभावना कभी निश्चित नहीं होगी। वे उसे पाने की कोशिश कर सकते थे मगर शक्ति उसकी गारंटी नहीं देगी। जोया ने सबसे पहले हाथ रखा। उसने वो भविष्य छोड़ दिया जिसमें उसकी शक्ति उसे कभी विफल नहीं करती। अब वो किसी दिन किसी प्रिय व्यक्ति को समय में वापस लाने में असफल हो सकती थी। देवेंद्र ने वो भविष्य छोड़ा जिसमें वो हर खतरा पहले देख सकता था। परी ने अपनी हमेशा जवान रहने की संभावना छोड़ी। राशिद ने सुरक्षित सेवानिवृत्ति का दृश्य छोड़ा जिसमें वो समुद्र किनारे छोटा घर खरीदता। काव्या ने बिना डरे साधारण जीवन की गारंटी छोड़ दी।
हर हाथ के साथ अलग रंग का धागा काल घड़ी तक गया। घड़ी की घूमती सुइयां धीमी हुई। नक्श ने तलवार उठाई पर उसे समझ नहीं आया कि कौन सा भविष्य काटे। 5 संभावनाएं एक दूसरे में घुलकर हर क्षण नया आकार ले रही थीं। देवेंद्र ने कहा, अब, और राशिद ने एम्बुलेंस की बची हुई ऑक्सीजन टंकी नक्श की ओर लुढ़काई। काव्या ने फ्लेयर मारा। धमाके ने नक्श को नहीं मारा मगर उसकी पकड़ एक पल के लिए ढीली हो गई। जोया ने तलवार की जमीन पर गिरी अवस्था चिन्हित कर दी। जब नक्श ने उसे फिर उठाया, जोया ने चिन्ह सक्रिय किया और तलवार उसके हाथ से वापस जमीन पर जा गिरी। ऋणदाता ने ये देखकर अपने सभी चेहरों को एक शरीर में समेट लिया। उसने आदित्य पर हमला नहीं किया, वो सीधे साझा धागों की तरफ बढ़ा। उसकी उंगलियां जिसे छूती उसके सामने सबसे प्रिय भविष्य जीवित हो जाता। परी ने खुद को 100 वर्ष बाद भी जवान देखा। राशिद ने समुद्र वाला घर देखा। देवेंद्र ने ऐसा संसार देखा जहां कोई दुर्घटना उसे चौंका नहीं सकती थी। एक पल के लिए उनके हाथ यंत्रपट्टी से ढीले पड़े और काल घड़ी फिर तेज होने लगी। आदित्य समझ गया कि केवल त्याग का संकल्प काफी नहीं है, मनुष्य सुंदर संभावना देखकर डगमगाएगा ही। साझा भविष्य को किसी ऐसे आधार की जरूरत थी जो गारंटी से नहीं भरोसे से बने। उसने अपना हाथ छठे स्थान पर रखा। यंत्र ने उसकी निश्चित इच्छा मांगी। उसके सामने माँ, काव्या, जोया और छोटी लड़की वाला घर प्रकट हुआ। यही उसका सबसे प्रिय भविष्य था। अगर वो इसे छोड़ देता तो ये मिटता नहीं पर कभी तय भी नहीं रहता। वो उस बच्ची से मिल सकता था, शायद कभी नहीं। जोया उसके साथ रह सकती थी, शायद उनकी राहें अलग हो जाती। माँ बच सकती थी, शायद बीमारी जीत जाती। उसने आंखें बंद कर कहा, मैं परिणाम की गारंटी छोड़ता हूँ, कोशिश करने का अधिकार नहीं। उसके हाथ से सफ़ेद धागा निकला, बाकी 5 रंग उससे जुड़ गए। दृश्यों में बनी नकली खुशियां टूट गईं, मगर उनके पीछे खालीपन नहीं था। अनगिनत अस्पष्ट रास्ते थे, कुछ अच्छे, कुछ दर्दनाक, कुछ ऐसे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भविष्य पहली बार किसी पुरस्कार की तस्वीर नहीं, जीवित संभावना जैसा लगा। ऋणदाता पीछे हट गया। उसके चेहरों में से एक वृद्ध आदित्य बोला, तो हमारा क्या, हम जिन्हें तुमने जन्म लेने से पहले जला दिया। आदित्य उसके सामने गया, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। मैंने हर बार शक्ति ली और सोचा कीमत केवल मेरी है। मैंने तुम सबको साधन समझा, लेकिन तुम्हें जीवन देने के लिए मैं बाकी दुनिया की पसंद नहीं छीन सकता। क्षमा से हमें वर्ष नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, आदित्य ने स्वीकार किया। मैं तुम्हारा कर्ज अतीत बदलकर नहीं चुका सकता, पर अपना बाकी वर्तमान तुम्हें दे सकता हूँ, मालिक बनकर नहीं, स्मृति बनाकर। तुमने जो सीखा, जो चाहा, वो मिटेगा नहीं। उसे सबकी संभावनाओं में लौटने दो। उसने भविष्य ऋण का अंतिम विकल्प खोला। इस बार उसने किसी आने वाले आदित्य से ताकत नहीं मांगी। उसने अपने जले हुए रूपों को बची काल ऊर्जा वापस करने का प्रस्ताव दिया। स्क्रीन लाल हो गई। ऐसा करने पर उसकी शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और पहले चुकाई कीमतें वापस नहीं आएंगे। छोटी लड़की की निश्चित संभावना, माँ के साथ शांत सुबह और काव्या के कॉलेज का पहला दिन फिर भी खोए रहेंगे। बदले में ऋणदाता के भीतर बंद ज्ञान और इच्छाएं मुक्त होकर सामूहिक समय में मिल सकती थीं। आदित्य ने स्वीकार कर लिया। उसकी कलाई का चिन्ह टूटने लगा। दर्द ऐसा था जैसे शरीर की हर नस से कोई चमकता तार खींच रहा हो। ऋणदाता के चेहरे एक एक कर उससे अलग हुए। सैनिक आदित्य ने राशिद की घायल बांह थामी और युद्ध में जीवित रहने की सहज समझ उसे दे दी। चिकित्सक आदित्य ने अस्पताल की तरफ प्रकाश भेजा। डॉक्टरों के मन में समय विकृत मरीजों का उपचार साफ होने लगा।
शिक्षक आदित्य ने काव्या के सामने किताबों से भरा कमरा देखा और मुस्कुराकर धूल बन गया। वृद्धादित्य ने माँ के पौधों को पानी देती छवि आदित्य की हथेली पर रखी। वो भविष्य लौट नहीं सकता था, पर उसकी गर्माहट स्मृति की तरह रह गई। अंत में पिता वाला आदित्य बचा। उसके साथ छोटी लड़की थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने गले से लाल धागा उतारकर वर्तमान आदित्य की कलाई पर बांध दिया। लड़की ने पूछा, अगर मैं तुम्हारी बेटी नहीं बनूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? आदित्य घुटनों पर बैठ गया। किसी ऐसे भविष्य में जहां तुम्हें खुद तय करना होगा कि तुम कौन हो। शायद हमारी मुलाकात हो, शायद ना हो, लेकिन इस बार तुम्हारा जीवन मेरी शक्ति का कीमत नहीं बनेगा। लड़की मुस्कुराई और प्रकाश में बदल गई। ऋणदाता का विशाल शरीर खाली आवरण की तरह गिरा। काल घड़ी की ऊर्जा 72 से घटकर 41% हो गई। नक्श ने ये देखा तो पागलों की तरह अपनी तलवार उठाने दौड़ा। उसकी बेटी की छवि और धुंधली हो रही थी। उसने आसपास की हर काच पट्टी काटनी शुरू कर दी। अगर मेरी तारा नहीं बच सकती तो किसी का भविष्य नहीं बचेगा। आदित्य के पास अब शक्ति नहीं थी, वो केवल घायल पैर वाला एक पैरामेडिक था। नक्श ने समयधार उसकी गर्दन पर चलाई, लेकिन देवेंद्र बीच में आ गया। उसने हमला 10 सेकंड पहले देखा था। तलवार उसके कंधे को छूती हुई निकली और उसके भविष्य दर्शन की क्षमता कट गई। देवेंद्र गिर पड़ा पर मुस्कुराया। पहली बार पता नहीं अगला पल कैसा होगा। परी ने नक्श की उम्र स्थिर करने की कोशिश की। नक्श ने उसके चारों ओर की संभावना काटी, मगर साझा धागे ने परी को दूसरी दिशा से वर्तमान दिया। जोया ने काल घड़ी को उस अवस्था में लौटाना चाहा जब वो बंद थी, पर इतनी बड़ी वस्तु पर उसकी शक्ति केवल 2 सेकंड चली। वही 2 सेकंड पर्याप्त थे। राशिद ने गिरा हुआ समयधार हथियार एम्बुलेंस की स्टील केबल से बांधा और गाड़ी पूरी गति से पीछे की। तलवार नक्श के हाथ से छूटी और घूमते हुए काल घड़ी के केंद्र में धस गई। घड़ी बंद हुई, उसकी सारी सुइयां 12 पर टिक गईं। फिर एक भयानक कंपन के साथ उनमें कैद भविष्य बाहर फूटे। नक्श ने तारा की पट्टी पकड़ने की कोशिश की। उसे एक क्षण के लिए अपनी बेटी वास्तविक दिखाई दी। उसने हाथ बढ़ाया तो तारा ने सिर हिलाया। पापा, उस दिन मेरी गलती नहीं थी, आपकी भी नहीं, उसने कहा। मुझे बचाने के लिए दूसरे बच्चों को मत मारो। नक्श रोते हुए बोला, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊं, जैसे बाकी लोग जीते हैं, याद के साथ, गारंटी के बिना। तारा की आकृति कांच की रोशनी में घुल गई। नक्श ने उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाई, पर उसके पैरों के नीचे वही भविष्य शून्य खुला जो उसने दूसरों की राहें काटकर बनाया था। वहां कोई अगला क्षण नहीं था जिसमें वो उतर सकता। वो अपनी ही काटी संभावना में समा गया और गायब हो गया। काल विखंडन का प्रतिशत तेजी से नीचे आने लगा। घड़ी घर की दरारें बंद हुई पर इमारत टूटने लगी। छत से विशाल धातु का पहिया गिरा। पहले वाला आदित्य किसी भविष्य से शक्ति लेकर सबको बचा सकता था, अब उसने केवल चिल्लाकर रास्ता बताया। राशिद और काव्या ने देवेंद्र को उठाया। जोया ने गिरते दरवाजे को 3 सेकंड पुरानी स्थिति में रोका और परी ने घायल आदित्य के शरीर को स्थिर रखा। वे सुरंग की ओर भागे। पीछे से पत्थर गिरते गए। एम्बुलेंस का इंजन पहली बार में चालू नहीं हुआ। राशिद ने डैशबोर्ड पर मुक्का मारा, दूसरी बार चाबी घुमाई और गाड़ी गर्जना के साथ आगे बढ़ गई। वे बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी। आकाश की काली दरार पतली रेखा बनकर बंद हुई। शहर जस का तस नहीं था। कुछ इमारतें लौट आई थीं, कुछ हमेशा के लिए गायब थीं। जिन लोगों ने दूसरे जीवन देखे थे उन्हें वे सपनों की तरह याद थे। किसी को अपना भविष्य निश्चित नहीं मालूम था। पहली बार घोषणा की आवाज भी नहीं आई, केवल पक्षियों की सामान्य आवाज थी। अस्पताल में माँ की हालत संभल गई। समय के दोहराव से हुआ नुकसान गंभीर था, मगर इलाज संभव था। डॉक्टर ने कोई गारंटी नहीं दी। आदित्य ने इस बार गारंटी मांगी भी नहीं। वो उनके पास बैठा तो माँ ने पूछा, तूने फिर कोई भविष्य जला दिया क्या? आदित्य ने टूटी कलाई दिखाई। दुकान बंद हो गई। माँ ने कमजोर हाथ से उसके सिर पर थपकी दी। अच्छा है, उधार की आदत कभी अच्छी नहीं होती। काव्या का कॉलेज महीनों बाद फिर खुला। उसका पहला दिन वैसा नहीं था जैसा आदित्य ने खोई संभावना में देखा था। नई किताबों की जगह उसके पास पुराना बैग था। फोटो खींचने के समय बारिश हो रही थी और आदित्य एम्बुलेंस की ड्यूटी से देर से पहुंचा। काव्या ने शिकायत की, फिर दोनों सड़क किनारे चाय पीकर हंसने लगे। आदित्य को एहसास हुआ कि उसने जिस पूर्ण दृश्य को खोया था, जीवन ने उसकी जगह एक अलग, अधूरा और वास्तविक दिन दिया था।
देवेंद्र की भविष्य दृष्टि वापस नहीं आई। वो आपदा दल का प्रशिक्षक बन गया और लोगों को सिखाने लगा कि बिना भविष्य जाने तैयारी कैसे की जाती है। परी की उम्र सामान्य गति से बढ़ने लगी। उसने अपने सफ़ेद बाल रंगने से इनकार कर दिया। राशिद को समुद्र वाला घर नहीं मिला, मगर उसने उसी एम्बुलेंस को ठीक कराकर उसके डैशबोर्ड पर नाम लिखा अगला पल। जोया की शक्ति कमज़ोर हो गई थी। वो किसी अवस्था को केवल 1 सेकंड लौटा सकती थी, पर कहती थी कि कभी कभी 1 सेकंड ही किसी हाथ को पकड़ने के लिए काफ़ी होता है। आदित्य फिर पैरामेडिक बन गया। स्क्रीन अब उसकी पुकार पर नहीं खुलती थी। दुर्घटना स्थल पर उसे उतना ही ज्ञान, उतनी ही शक्ति और उतना ही समय मिलता जितना वर्तमान में उसके पास होता। कुछ लोगों को वो बचा लेता, कुछ को नहीं। हर असफलता में उसे भविष्य ऋण की याद आती, मगर लाल धागा उसकी कलाई पर बंधा रहता और उसे याद दिलाता था कि जीवन को बचाना और परिणाम का मालिक होना अलग बातें हैं।
एक वर्ष बाद शहर के पुनर्निर्माण समारोह में ज़ोया उसके साथ घड़ी घर के खंडहर गई। वहां एक छोटा स्मारक बना था जिस पर उन लोगों के नाम थे जो समय विखंडन में खो गए। किसी ने नक्श और तारा के नाम भी साथ लिख दिए थे। आदित्य ने नाम मिटाया नहीं। ज़ोया ने पूछा, तुमने उस भविष्य में मुझे देखा था ना? आदित्य ने झूठ बोलने की कोशिश की, मगर उसकी मुस्कान ने जवाब दे दिया। और एक घर था, माँ थीं, काव्या थीं, तुम चाय बना रही थीं। चाय अच्छी थी? दृश्य में स्वाद नहीं था। ज़ोया ने पास की दुकान से दो कुल्हड़ खरीदे। चाय जरूरत से ज्यादा मीठी थी। उसने एक कुल्हड़ आदित्य को देकर कहा, ये भविष्य से कम सुंदर है, लेकिन कम से कम इसका स्वाद तो है। दोनों टूटे घड़ी घर की सीढ़ियों पर बैठ गए। उनके बीच कोई वादा नहीं हुआ। फिर भी जब बारिश शुरू हुई तो ज़ोया ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया और आदित्य ने उसे हटाया नहीं। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर एक बच्ची ने पुराने मलबे में लाल कांच का छोटा टुकड़ा उठाया। उसमें उसे अपना चेहरा नहीं, अनगिनत अनजान चेहरों की मुस्कान दिखाई दी। कांच पर एक शब्द चमका, संभावना। बच्ची ने उसे जेब में रखा और माँ की आवाज़ सुनकर दौड़ गई। टुकड़ा बुझ गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। आदित्य की कलाई पर बंधा लाल धागा हल्का गर्म हुआ। सामने कोई स्क्रीन नहीं खुली, कोई चेतावनी नहीं आई। उसने दूर फैलते शहर को देखा, जहां करोड़ों अगले पल एक साथ जन्म ले रहे थे और कोई भी अभी निश्चित नहीं था। कभी वो इसी अनिश्चितता से डरकर भविष्य से शक्ति मांगता था। अब उसे समझ आया कि भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसमें पहले से मौजूद उत्तर नहीं, बल्कि ये स्वतंत्रता है कि अगला उत्तर अभी लिखा जाना बाकी है।